पृष्ठ संख्या 9, सामाजिक क्रांति का शंखनाद। डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में छेड़ा गया सामाजिक युद्ध अछूतोद्धार का लंबा सफर है। महाराष्ट्र की विधान परिषद के एक सदस्य ने प्रस्ताव रखा कि महाराष्ट्र के दलित सभी सार्वजनिक स्थानों के पेयजल का उपयोग कर सकते हैं, कुओं और धर्मशालाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनका नियंत्रण सार्वजनिक संस्थाओं के हाथ में है तथा जिनका रख रखाव जनता के पैसे से होता है। इसके साथ सार्वजनिक स्कूल, कोर्ट, कार्यालय और अस्पतालों में भी दलित समान रूप से जा सकते हैं। 1923 में महाराष्ट्र की सरकार ने मिस्टर एस के वोले के उक्त प्रस्ताव के अनुपालन में एक निर्देश सभी स्थानीय निकायों को भेजकर आदेशित किया कि दलित समाज को सार्वजनिक स्थल की सभी प्रकार की सुविधाओं से किसी हालत में वंचित न कराया जाए। किंतु सरकार के उक्त आदेश का पालन नहीं होता था। फिर उन्हीं माननीय सदस्य ने 1926 में एक दूसरा प्रस्ताव रखा कि ऐसे किसी भी म्यूनिसिपल बोर्ड अथवा जिला परिषद को कोई सरकारी सहायता न दी जाए जो सरकार के इस आदेश का पालन नहीं करते। पृष्ठ संख्या 10, ऐसी घोषणा होने पर महाड़ की नगर पालिका ने अपने सार्वजनिक झील का दरवाजा सभी जातियों के लिए खोल दिया, किंतु वहां के सवर्ण हिंदुओं ने इसका जबरदस्त विरोध किया। वे नगर पालिका के आदेशों के बावजूद दलितों को उक्त तालाब का पानी नहीं पीने देते थे। सरकारी आदेश के बावजूद दलितों को उक्त सुविधा प्राप्त न हो सकी, क्योंकि वहां का स्थानीय तंत्र ऐसा नहीं कराना चाह रहा था। डॉक्टर अंबेडकर के मन में इस सामूहिक दुर्भावना के विरुद्ध गुस्सा पैदा हुआ। उन्होंने अपने सम्मान की रक्षा हेतु संपूर्ण दलितों से संघर्ष का आह्वान किया। 20 मार्च 1927 को महाड़ में दलितों का विशाल सम्मेलन हुआ, जिसमें लगभग 10,000 प्रतिनिधि भाग लिए। अपने अध्यक्षीय भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित चेतना को झकझोर दिया। उन्होंने उच्चता और नीचता के भाव को खत्म करने का आह्वान किया। उन्होंने दलितों से अपने पैरों पर खड़ा होने व स्वयं चेतना से स्वाभिमान और स्व आदर पैदा करने की बात कही। उन्होंने अपने समर्थकों से पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी में बढ़ चढ़ कर भाग लेने की वकालत की। उन्होंने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि अपना घर बार त्यागो, जंगल की तरफ भागो और जंगलों पर कब्जा कर उसे खेती लायक बनाकर अपना अधिकार जमाओ। वहां प्रस्ताव पास कर सवर्ण हिंदुओं और महाराष्ट्र सरकार से अपील की गई कि दलितों को सम्मान देने के लिए सरकार अपने ही आदेश पर अमल कराए। उसके बाद सभी दलित वर्गों के प्रतिनिधि सम्मेलन स्थल से उठकर तालाब पर कब्जा जमाने के लिए चले, किंतु तभी सांप्रदायिक तत्वों ने शहर में अफवाह फैला दी कि अछूतों ने वहां स्थित वीरेश्वर मंदिर पर कब्जा कर लिया। इतने में सभी सवर्ण हिंदू लाठी डंडों से लैस अपने घरों से निकल पड़े। पुलिस की देखरेख में दलितों पर हमला शुरू हो गया। सैकड़ों लोगों को मारकर जख्मी कर दिया गया। हजारों दलितों ने मुस्लिम घरों में शरण ली। डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं एक पुलिस स्टेशन में शरण ली। महाड़ की घटना ने पूरे महाराष्ट्र में उग्र रूप धारण कर लिया। दलितों पर जुल्म तीव्र हुए। सवर्ण हिंदू उनकी जमीनें छीनने लगे। सार्वजनिक स्थानों पर पकड़कर उनकी पिटाई शुरू हुई। डॉक्टर अंबेडकर ने सत्याग्रह की धमकी दी। उन्होंने दलितों से अपने अधिकार प्राप्ति हेतु मर मिटने की अपील की। सार्वजनिक कुएं, मंदिर, पेयजल स्थल पर उनके प्रवेश निर्बाध ढंग से हो, इसके लिए सरकार ने कठोर पग उठाए। उन्होंने सवर्ण हिंदुओं का गुस्सा शांत करने के लिए कहा कि सभी सवर्ण हिंदू दलितों के दुश्मन नहीं हैं, इनके तमाम प्रगतिशील लोग हैं जो हमारे समर्थक हैं। डॉक्टर अंबेडकर के प्रथम महान संग्राम के परिणाम स्वरूप महाराष्ट्र में दलितों को सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश बाधा डालने वालों को दंडित करने का कानून बना। फिर भी महाड़ के सवर्ण तालाब के जल का उपयोग दलितों को नहीं करने दे रहे थे। दिसंबर 1927 में महाड़ सत्याग्रही सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन के लिए कोई स्थान देने को तैयार नहीं था। किसी मुसलमान भाई ने सम्मेलन के लिए स्थान दिया। स्थानीय व्यापारी सम्मेलन में आने वाले प्रतिनिधियों को खाने पीने की सामग्री देने को तैयार नहीं थे। अंबेडकर 3,000 सत्याग्रहियों के साथ बंबई से जाने को तैयार थे, किंतु जिला मजिस्ट्रेट ने इतने लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी। अपने भाषण में अंबेडकर ने कहा कि वर्ण व्यवस्था ही विषमता का मूल कारण है। हिंदू समाज को दो सिद्धांतों पर संगठित होना चाहिए, प्रथम समानता और दूसरा जातीयता का विनाश। पृष्ठ संख्या 11। इस सम्मेलन में मनुस्मृति की प्रतियां जलाई गईं। डॉक्टर अंबेडकर का विचार था कि मनुस्मृति से पूर्व भी जाति प्रथा थी, मनुस्मृति ने तो केवल इसे संहिताबद्ध किया। उनके अनुसार इस ग्रंथ ने दलितों पर सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनैतिक दास्ता लाद दी। इस तरह महाराष्ट्र में पेयजल आंदोलन के कुछ सार्थक परिणाम आए। उनका कहना था कि केवल पूजा पाठ के आंदोलनों से दलितों का कोई उद्धार नहीं होने वाला है। मंदिरों में प्रवेश के आंदोलन सवर्ण हिंदू मानसिकता को झकझोरने और दलित आंदोलन को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए हैं। मई 1930 में उन्होंने नासिक के कलाराम मंदिर में अछूत प्रवेश का आंदोलन खड़ा किया। 15,000 पुरुष और 500 महिला सत्याग्रहियों ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया। डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं इस सत्याग्रह की अगुवाई की। उनके नेतृत्व में 1 किलोमीटर लंबा जुलूस निकला। उस समय मंदिर के फाटक बंद कर दिए गए। सवर्ण हिंदुओं ने उनके ऊपर सड़े अंडे, टमाटर और पुराने जूते फेंके। फिर भी उक्त सत्याग्रह शांतिपूर्ण था। चूंकि मंदिर का फाटक बंद था, इसीलिए सत्याग्रही गोदावरी नदी तक जाते और घाट पर स्नान कर मंदिर के बाहर से चले जाते थे। महीनों के संघर्ष के बाद सवर्ण और दलित हिंदुओं में समझौता हुआ, जिसके द्वारा रामनवमी ब्रैकेट में राम जन्म की तिथि ब्रैकेट क्लोज दलित और सवर्ण दोनों मिलकर राम का रथ खींचेंगे, दोनों में राम पूजा के समय एकता रहेगी। इसके बाद मंदिरों के कपाट खुल गए, दलित सवर्ण एकता स्थापित हो गई। आंदोलन स्थगित हो गया, किंतु जब राम नवमी की तिथि आई तो पुनः सवर्ण लोगों ने समझौता तोड़ दिया। राम रथ निकालने में दलितों की हिस्सेदारी नहीं हुई। पुनः आंदोलन प्रारंभ हो गया और प्रशासन ने दंगे की स्थिति को देखते हुए मंदिर के कपाट पुनः बंद करा दिया। यह आंदोलन 1935 तक चला। इन आंदोलनों की बाढ़ को देखकर दक्षिण भारत के एक सदस्य डॉक्टर सुब्बा राय ने एक विधेयक केंद्रीय धारा सभा में प्रस्तुत किया। उनका कहना था कि देश का जनमत मंदिरों के दरवाजे हरिजनों के लिए खोल देने के पक्ष में है, इसीलिए उनके लिए मंदिरों के दरवाजे खुले रहें। महाराष्ट्र में वंशानुगत वेतन परंपरा थी। इसके अनुसार महार जाति के लोग 24 घंटे सरकारी सेवा, सफाई और चौकीदारी में बहाल रहते थे। 24 घंटे सेवा बारी बारी से एक परिवार के लोग करते थे और इसके एवज में सरकार उन्हें बसने के लिए एक सीमित भूखंड देती थी और कुछ आना अथवा 1-2 रुपए महीने में देती थी। यह एक जाति विशेष पर घोर जुल्म था जिसमें डॉक्टर अंबेडकर स्वयं पैदा थे। उन्होंने 1928 में महाराष्ट्र की विधान परिषद में इस काले कानून को बदल डालने का एक संशोधन विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में इसी तरह बसने की थोड़ी जमीन दलितों को देकर राजे महाराजे 24 घंटे काम लेते थे। उनका आग्रह था कि सभी खाली पड़ी जमीन दलितों में बांटी जाए, वे इसमें मालिकाना हक को प्राप्त करें और उसे जोत बोकर खेती लायक बनाएं, वेतनदारों के काम के घंटे निर्धारित हों और उसके अनुपात में उन्हें मजदूरी दी जाए। उन्होंने कहा, यदि मेरा विधेयक पास नहीं होता तो महारों को संगठित कर अरसे से चली आ रही इस शोषक व्यवस्था के खिलाफ उन्हें संघर्ष के लिए खड़ा करूंगा। किंतु यह विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द हो गया जिसने मूल विधेयक में अनेक संशोधन कर दिए जिससे डॉक्टर अंबेडकर सहमत नहीं हुए। उन्होंने उस विधेयक को वापस ले लिया। 1937 में कांग्रेस की अंतरिम सरकार आई। पृष्ठ संख्या 12। उसका विचार था कि इस तरह की व्यवस्था गलत है। महारों ने एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया। तत्पश्चात बंबई के गवर्नर को एक ज्ञापन दिया गया। महाराष्ट्र सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर से इस प्रश्न पर मंत्रणा की। महारों ने मांग रखी कि महारों को वेतन भूमि रैयतवादी ब्रैकेट में स्थायित्व ब्रैकेट क्लोज के रूप में बदल दी जाए, महारों को मासिक वेतन दिया जाए, उनसे केवल सरकारी काम लिए जाएं। 1937 में डॉक्टर अंबेडकर ने पुनः एक विधेयक काउंसिल में प्रस्तुत किया। उसमें उन्हीं बातों को दोहराया गया, किंतु सरकार ने कहा कि इस समय वह युद्ध में फंसी है, देश में आपातकाल लागू है, ऐसे में इस तरह के महार आंदोलन पर जोर देने की जरूरत नहीं है। 1942 में डॉक्टर अंबेडकर वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य हो गए। तब उन्होंने कहा कि वायसराय की कार्यवाही परिषद का सदस्य होकर मैं दलितों की बेहतर सेवा कर सकता हूँ, इसीलिए मुझे अब आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। इस व्यवस्था के खिलाफ वे जीवन पर्यंत लड़ते रहे, किंतु 1959 में यह व्यवस्था समाप्त हुई जब वे स्वयं जिंदा नहीं रहे। महाराष्ट्र की सरकार ने 1930 में दलितों की शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक दशा का अध्ययन करने के लिए एक कमेटी का गठन किया। इसमें एवी ठक्कर, अंबेडकर और डॉक्टर पीजी सोलंकी थे। कमेटी के दौरे के समय डॉक्टर अंबेडकर को जगह जगह अपमानित किया गया। एक स्कूल के हेडमास्टर ने उन्हें प्राइमरी पाठशाला के परिसर में जाने से रोका। 40 गांव में टांगा ड्राइवर ने उन्हें ले जाने से मना किया। इस कमेटी ने दलित छात्रों के लिए अधिकाधिक छात्रवृत्ति देने और छात्रावासों के निर्माण पर बल दिया। रेलवे कारखानों के वर्कशॉप में दलितों के लिए प्रशिक्षण की सुविधा देने और अधिकाधिक छात्रों को विदेश में शैक्षिक छात्रवृत्ति देने की संस्तुति की गई। दलितों को सेना और पुलिस में भर्ती करने का आग्रह किया गया। जगह जगह दलितों के लिए सांस्कृतिक व सामाजिक केंद्र खोलने की संस्तुति हुई। गांधी जी के आग्रह पर दलित के स्थान पर हरिजन शब्द रखने की बात हुई। महाराष्ट्र की विधानसभा में हरिजन शब्द को वैधानिक शक्ति देने का प्रस्ताव भी आया। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, हरिजन शब्द अस्पृश्य की ही तरह है, यह अछूतों को मीठा शब्द देने का एक प्रयास है। गांधी जी के हरिजन फंड की भी उन्होंने मुखालफत की और कहा कि इससे अछूत सवर्ण के दास बने रहेंगे। उन्होंने गांधी जी से कहा कि आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक उत्थान के लिए वे काम करें। मंदिर प्रवेश और सामूहिक भोज का काम हम लोगों पर छोड़ें। मानव अधिकार के लिए कैंपेन करें। गांधी जी ने डिप्रेस्ड क्लास लीग का नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ रख दिया। उन लोगों की राय में छुआछूत की समाप्ति एक प्लेटफार्म है, प्रोग्राम नहीं। अंबेडकर ने कहा, यह कांग्रेस का प्लेटफार्म है, अछूतों को अपने झंडे तले लाने के लिए। उनका कहना था, अछूत हिंदुओं के तत्व नहीं है, बल्कि भारत की राष्ट्रीय व्यवस्था में एक अलग तत्व है, जैसे मुसलमान। वे अलग से कास्ट हिंदूज के मुकाबले राजनैतिक अधिकार चाहते हैं।